हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृपया अपना मोबाइल बंद कीजिए।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर सत हिस् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय उपसंहार सन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 74। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। दो प्रभु जी, दो माता जी। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य तस्य च महात्मनः अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय उवाच, संजय ने कहा, इति इस प्रकार, अहम् मैं वासुदेवस्य कृष्ण का, पार्थस्य तथा अर्जुन का च भी महाआत्मनः महात्माओं का संवादम वार्ता इमम यह अश्रौषम सुनी है अद्भुतम अद्भुत रोमहर्षणम रोंगटे खड़े करने वाली। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तात्पर्य, भगवद गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यास देव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन हैं वहीं वहीं विजय होती है। अनुवाद को दोहराइए। संजय ने कहा,
इस प्रकार
मैंने
कृष्ण तथा अर्जुन
इन दोनों महापुरुषों की
वार्ता सुनी
और यह संदेश
इतना अद्भुत
है
कि मेरे शरीर
में
रोमांच
हो रहा है।
ओम ज्ञान
तिमिरांधस्य
ज्ञानांजनशलाकया
चक्षुरोन्मीलितं
येन
तस्मै
श्रीगुरवे
नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं
येन
भूतले
स्वयं
रूप कदा
मह्यं
ददाति
स्वपदान्तिकं।
वन्देहं
श्रीगुरो
श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरून्
वैष्णवांश्च
श्रीरूपं
साग्रजातं
सहगणरघुनाथान्वितं
तं
सजीवं
साद्वैतं
सावधूतं
परिजनसहितं
कृष्णचैतन्यदेवं
श्रीराधाकृष्णपादां
सहगणललिता
श्रीविशाखान्वितांश्च।
नमो
ओं विष्णुपादाय
कृष्णप्रेष्ठाय
भूतले
श्रीमते
भक्तिवेदांत
स्वामिनिति
नामिने।
नमस्ते
सारस्वते
देवे
गौरवाणे
प्रचारिणे
निर्विशेष
शून्यवादी
पाश्चात्यदेशतारिणे।
मुखं
करोति
वाचालं
पंगुं
लंघायते
गिरिं
यत्कृपातमहं
वंदे
श्रीगुरुं
दीनतारणं।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपासिन्धोभ्य
एव च
पतितानां
पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो
नमो नमः।
नमो
महावदान्याय
कृष्णप्रेमप्रदायते
कृष्णाय
कृष्णचैतन्य
नामने
गौरत्विषे
नमः।
पञ्चतत्त्वात्मकं
कृष्ण
स्वरूपकं
भक्तावतारं
भक्ताख्यं
नमामि
भक्तशक्तिकं।
आराध्यो
भगवान्
व्रजेशतनयस्
तद्धाम
वृन्दावनम्
काचिदुपासना
व्रजवधु
वर्गेण
या कल्पिता।
श्रीमद्भागवतं
प्रमाणममलं
प्रेमापुमर्थो
महान्
श्रीचैतन्य
महाप्रभोर्मतमिदं
तत्रादरः
न परः।
हे
कृष्ण
करुणा
सिन्धो
दीनबन्धो
जगत्पते
गोपेश
गोपिका
कांत
राधा
कांत
नमोस्तुते।
तप्त
कांचन
गौरांगी
राधे
वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते
देवी
प्रणमामि
हरि प्रिये।
जय
श्री कृष्ण
चैतन्य
नंद
श्रीवासादि
गौर
भक्तवृंद।
हरे
कृष्णा
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 हरे हरे
हरे राम
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 हरे
हरे।
हरे कृष्णा। मोक्षदा एकादशी के दिवस पर आप सबका यहाँ श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। कल हमने यहाँ भगवद गीता जयंती मनाई और यहाँ सारे भक्तों ने मिलकर भगवद गीता के 700 श्लोकों का पठन किया एक साथ। आप में से कितने भक्त यहाँ पर कल गीता पठन के लिए उपस्थित हो पाए थे, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत कम, तो आप में से कई भक्त नहीं आ पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, हम सब भक्त मिलके स्मरण करते हैं उस समय का। नहीं है ना, बीच बीच में हम स्मरण करते हैं उस समय का जब श्री कृष्ण ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश अर्जुन को दिया था। और अगले साल, जैसे मैंने कल कहा था, हम बहुत बड़े पैमाने पे करेंगे, हो सकता है किसी मैदान में या स्टेडियम में करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर आएं। तो अगले साल कल की तरह मत कीजिए, आप सबको आना है। आज एक साल है अभी तैयारी करने के लिए, तो अभी अच्छी तरह से गीता के श्लोकों का पठन करना शुरू कीजिए। अभी श्लोकों का पुस्तक तो है ही, उसका प्रकाशन भी मंदिर के द्वारा हुआ है, और साथ साथ प्रभुपाद जी के भगवद गीता यथारूप को भी रोज पढ़ना है और इसका वितरण भी करना है। विशेष रूप से इस महीने में हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ विश्व भर में सारे भक्त भगवद गीता का वितरण करते हैं बहुत बड़े पैमाने पे। तो आशा करते हैं कि आप सब भी इस भगवद गीता पुस्तक वितरण में के कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान कृष्ण का और श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भगवद गीता का संदेश किन के कृपा से हम तक पहुंच रहा है? हाँ, प्रभुपाद जी हैं, आगे पूर्ववर्ती आचार्य इत्यादि हैं, परंतु संजय, इनके द्वारा ये धृतराष्ट्र तक पहुंचाया गया। सो संजय इनके कार्य के कारण धृतराष्ट्र समझ पाए कि युद्ध भूमि पे क्या हो रहा था, और युद्ध भूमि में, युद्ध के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, इन दो महापुरुषों के बीच में जो संवाद हुआ, इसका भी यथारूप वर्णन, जैसे है वैसे वर्णन संजय ने किया। किस प्रकार से किया, कैसे किया, क्यों वो ऐसा कर पाए इत्यादि हम बाद में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने कल कहा था, हम आज संजय, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे, और केवल आज नहीं अगले रविवार को भी करेंगे। तो आज का रविवार, आज का दिन और अगला रविवार जो है, ये हम संजय भावना भावित होंगे, क्योंकि संजय भगवान कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए ये कृष्ण भावना भावित होना ही है, क्योंकि भक्त भगवान से भिन्न नहीं होते हैं। और जैसे कि हम इस श्लोक में भी देख रहे हैं, जब संजय ने भगवद गीता का संवाद सुना, सुन के ही तो फिर उन्होंने आगे जाके धृतराष्ट्र को कहा ना, तो वो क्या कह रहे हैं यहां पर, वो बतला रहे हैं कि किस तरह से इस दो महापुरुषों के बीच में ये अद्भुत संवाद हुआ, और रोम हर्षणम, उनके रोंगटे खड़े हो गए इस अद्भुत संवाद को सुनकर। अभी केवल भक्त ही है जो इस संवाद को अद्भुत कह सकता है, भले कोई ऐसे अन्य लोग भी अद्भुत कहें, परंतु रोम हर्षणम, उनके रोंगटे खड़े नहीं होंगे। कोई साधारण व्यक्ति के रोंगटे नहीं खड़े हो सकते। और आगे चल के संजय बताने वाले हैं कि और किस प्रकार का अनुभव उनको हुआ भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन के बीच में संवाद सुनकर। तो ऐसे जो लक्षण हैं वो केवल भगवान के भक्तों में ही हो सकते हैं। इसलिए ये एक निश्चित बात है कि संजय भगवान के भक्त हैं और उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण सेवा की सारे विश्व के लिए, केवल पृथ्वी के लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए उन्होंने इतनी बड़ी सेवा की कि भगवद गीता का संदेश सारे दुनिया तक पहुंचाया। गीता के चौथे अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि हे अर्जुन, ये पहली बार मैं भगवद गीता नहीं कह रहा हूं, इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो मैंने अनेक वर्ष पूर्व, लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व मैंने यही संदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और इससे फिर परंपरा में यह ज्ञान आता गया। तो इस ज्ञान को मैं पुनः तुम्हें दे रहा हूं। तो जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को ज्ञान दिया था, हो सकता है बल्कि निश्चित रूप से रूप में अंतर था उसका, क्योंकि यहां जिस भगवद गीता से हम परिचित हैं उसमें केवल 700 श्लोक हैं, परंतु जिस गीता को भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान से कही थी उसमें कितने श्लोक थे ये नहीं पता। लंबा संवाद हुआ होगा उस समय, हो सकता है उसमें हजारों करोड़ों श्लोक भी हुए होंगे, नहीं पता। परंतु जो मूल सिद्धांत हैं, मूल जो तत्व हैं, वो वैसे के वैसे हैं। तो इस आधुनिक काल में, विशेष रूप से द्वापर के अंत में जब किया गया, तो कलयुग के लोगों के लिए ये भगवद गीता का जो रूप है संजय के कारण हम तक पहुंच रहा है। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण और मूल्यवान सेवा संजय ने की। हां, भले वो व्यासदेव के निमित्त बने, फिर भी निमित्त तो बने ना। जिस प्रकार से भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, अर्जुन का और एक नाम है सव्यसाची। सव्यसाची का अर्थ क्या है? दोनों हाथों से। सव्य मतलब क्या? बाया हाथ, ब्राह्मण बोल सकते हैं। आप करते हो ना अपने, क्या बोलते हो? सव्य। सव्य क्या करना चाहिए उपवीत को? सव्य बाएं तरफ। तो सव्य अर्थात बाया। अर्जुन दाया हाथ के से करते थे साधारण काम। हम अधिकतर लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं, थोड़े लोग बाएं हाथ से करते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि कोई बाएं हाथ से भी कुछ कर सकता है, इसका मतलब है कि दोनों हाथ से कर सकता है, दाहिने हाथ से भी और बाएं हाथ से भी। तो अर्जुन वैसे दाहिने हाथ से कार्य किया करते होंगे, परंतु जब तीर चलाने की बात आती थी तो दोनों हाथों से कर सकते थे, इसलिए उनका नाम हुआ सव्यसाची। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सव्यसाची, मैंने तो इन कौरवों की हत्या कर ही दी है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम्हें श्रेय मिले, तुम मेरा निमित्त बन के युद्ध में लड़ाई करो। तो इस प्रकार से श्रेय अर्जुन को जाता है, इसलिए हम अर्जुन का स्मरण करते हैं कि अर्जुन कितने शक्तिशाली योद्धा थे, भगवान कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे। तो अर्जुन को कितना बड़ा श्रेय जाता है, यद्यपि वो केवल निमित्त थे। यद्यपि कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान के हाथों में निमित्त बनना भी ये कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। भगवान केवल ऐसे विशेष व्यक्तियों को ही चुनेंगे ना, जो कि उनके निमित्त बन सके इतने बड़े कार्य करने के लिए। तो उसी प्रकार से भगवद गीता का संदेश सारी दुनिया तक पहुंचाना ये बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए कोई साधारण आदमी को यह सौंपा नहीं गया था, संजय जैसे व्यक्ति को सौंपा गया। किन्होंने सौंप दिया? व्यास देव जी ने। और इसके बारे में हम अगले रविवार को विस्तार में सुनेंगे। तो इतना इस समय कहना पर्याप्त है कि संजय न केवल एक बहुत अच्छे कृष्ण भक्त थे, परंतु उन्होंने बहुत बड़ी सेवा भी की। भगवत गीता के का पहला श्लोक कैसे प्रारंभ होता है? धृतराष्ट्र उवाच से शुरू होता है, धर्म क्षेत्र से नहीं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव। तो धृतराष्ट्र के कहने से शुरू होता है, पर उसके बाद में तुरंत संजय उवाच कि संजय ने कहा, उवाच मतलब कहा। तो हम देखते हैं कभी धृतराष्ट्र कुछ कहते हैं, कभी संजय कहते हैं, कभी अर्जुन कहते हैं श्री अर्जुन उवाच, और कभी कभी श्री भगवान उवाच। तो संजय भगवद गीता का जो कथन है वो संजय का कथन है, संजय उवाच। फिर संजय कहते कहते फिर अपने वर्णन में वो कह रहे हैं अर्जुन उवाच, श्री भगवान उवाच। परंतु जहां तक धृतराष्ट्र सुन रहे हैं वो तो संजय ही बोल रहे हैं, तो धृतराष्ट्र के लिए संजय उवाच ही है। तो वास्तव में संपूर्ण भगवद गीता में संजय उवाच है कि संजय ने कहा। तो यह हम अनेक श्लोकों में देखेंगे, आज के श्लोक में भी हमने देखा संजय उवाच, और अनेक अन्य श्लोकों में भी ये भगवद गीता में पाया जाता है। तो संजय की भूमिका भगवद गीता में बहुत महत्वपूर्ण है, साथ साथ संपूर्ण महाभारत में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है संजय की। और आज और अगले रविवार को इस महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में थोड़े विस्तार में चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा विस्तार में संभव नहीं है, क्योंकि महाभारत में इतने अनेक प्रसंग हैं जिनमें संजय का उल्लेख हुआ है। तो ये संजय शब्द का अर्थ क्या है? आजकल तो संजय बहुत ही लोकप्रिय नाम है। आप में से कोई है जिनका नाम संजय है? होंगे अवश्य, कोई ना कोई होंगे ना, नहीं? तो संजय, सम जय या सम्यक जय, जय अर्थात जीत, सम मतलब साथ में, तो जीत के साथ अर्थात जो विजयी है। अन्यथा हम ये भी कह सकते हैं सम्यक जय, जो पूर्ण रीति से जीतता है, जिसने जीत प्राप्त कर ली है, तो वो संजय, पूर्ण विजय, संपूर्ण विजय। इसलिए ये नाम है संजय। तो जब नाम देते हैं बच्चों को तो अर्थपूर्ण नाम होने चाहिए। ये पिंटू बंटू टॉमी ऐसे नाम रखने से कुछ होगा नहीं। आजकल हम इतने सारे हिंदू समाज में भी लोगों को देखते हैं जो ऐसे वैसे नाम कुछ रख देते हैं, कभी कभी इधर से एक अक्षर ले लिया माता के नाम से, पिता के नाम से कुछ दो, भले उस संयुक्त अक्षर को कोई अर्थ हो न हो, बस ऐसे कोई नाम दे देते हैं। कितनी बार जब मैं माता पिता को पूछता हूँ नाम, बच्चे का नाम का अर्थ क्या है, तो कहते नहीं ऐसे मन में आया हमने रख दिया, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अर्थ होना चाहिए, कोई ना कोई भगवान से संबंधित, भगवान के भक्ति से संबंधित, भगवान के भक्तों से संबंधित कोई नाम होना चाहिए। कम से कम इस तरह का तो नाम हो जिसमें कोई अर्थ हो, संजय। कभी कभी ऐसे कोई विचित्र या विशेष या अद्भुत गुण होते हैं, जैसे विक्रम या आदित्य या अमर, ऐसे भी नाम होते हैं, ठीक है, कोई तो अर्थ होना चाहिए। तो ये है संजय। तो संजय कौन थे? वैसे उन वो एक सूत कुल से थे, जैसे और कौन सूत थे? सूत और सूत गोस्वामी, रोमहर्षण सूत। सूत गोस्वामी वो हैं जिन्होंने नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवतम का संदेश दोहराया, जो कि उन्होंने सुना था, कहां पर? गंगा के तट पे, जबकि शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से संवाद किया था। तो सूत परिवार के थे, उनके पिता का नाम था गवलगण ऋषि, ये सब महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। एक ऋषि तुल्य थे, संजय, और उसी सामाजिक वर्ग में थे जिसमें कि कौरव जो राजकुमार थे वो घूमते थे, उठते बैठते थे, इसलिए कौरवों के भी वो निकट आ गए और आगे चल के वो धृतराष्ट्र के मंत्री बन गए। एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक सेवा है ये। और उस समय ऐसे देखा जाता था कि जो निकट के सेवक या सहायक या मंत्री होते थे वो सारथी भी होते थे, जैसे दारुक और कृष्ण और धृतराष्ट्र के लिए भी, और हमारे श्री रामचंद्र के पिता दशरथ महाराज के भी सुमंत्र उनके मंत्री थे, उनके सारथी भी बने। तो इस प्रकार से संजय, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान था उनका धृतराष्ट्र के राज्य में, क्योंकि वो उनके बहुत निजी सहायक थे। अनेक चीज़ों के लिए वो संजय से सलाह लेते थे। कोई ऐसे बहुत ही गोपनीय कोई कार्य संपन्न करना होता था जिसके लिए बहुत ही भरोसेमंद या विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता होती थी, तो वो संजय को चुनते थे। वो व्यासदेव जी के शिष्य थे और बहुत ही श्रद्धालु थे धृतराष्ट्र के प्रति। श्रद्धालु होने का अर्थ ये नहीं कि वो धृतराष्ट्र के त्रुटियों को नहीं जानते थे, वो जानते थे। और क्योंकि जो श्रद्धालु सेवक होते हैं वो ईमानदार होते हैं, और कभी कभी अपने स्वामी के हित के लिए जो आवश्यक है वो करते हैं। कभी कभी मीठे वचन बोलते हैं, परंतु कभी कभी यदि अपने स्वामी की भलाई के लिए कोई कटु वचन कहने की आवश्यकता हो तो वो भी बोल देते हैं। परंतु ऐसे श्रद्धालु सेवक के इस प्रकार के कटु वचन कहने में और ईर्ष्यालु व्यक्ति के कटु वचन कहने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो विदुर, भीष्म, द्रोण इत्यादि जब इन्होंने कटु वचन कहे, ये भी शुभ चिंतक के रूप में किए, एक हितैषी के रूप में किए। उसी प्रकार से संजय भी जब कोई कटु वचन कहा करते थे तो धृतराष्ट्र के हित के लिए कहा करते थे। और एक बात है, ऐसे व्यक्ति जैसे कि संजय, भीष्म इत्यादि, जो भी वो कटु वचन भी कहते तो धर्म के आधार पर कहते थे। दूसरी ओर दुर्योधन आदि कभी कभी कटु वचन कहते। दुर्योधन भी अपने पिता के विरुद्ध में कितना कुछ कह बैठे थे, परंतु वो ईर्ष्या से, अधर्म से स्फुरित होते थे। और आगे चल के हम देखेंगे कि किस प्रकार से संजय इतने श्रद्धालु सेवक होने के बाद भी धृतराष्ट्र से कटु वचन या सत्य कहने के लिए हिचकिचाए नहीं। जब युधिष्ठिर महाराज इंद्रप्रस्थ पे राज्य कर रहे थे तो आधा आधा बंट गया था ना राज्य, और कौरव हस्तिनापुर में थे। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। तो उस राजसूय यज्ञ में बहुत सारे पृथ्वी से जितने भी राजा महाराजा थे, बड़े बड़े नागरिक थे, उन सबको आमंत्रण दिया गया था। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज का प्रतिनिधित्व करते हुए संजय सारे अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। तो देखिए कितना घनिष्ठ संबंध था संजय का। आगे चल के एक बहुत ही बुरी घटना हुई, जब द्यूत क्रीड़ा में धोखेबाजी के कारण युधिष्ठिर महाराज को हराया गया। जैसा कि आपने सुना होगा कि युधिष्ठिर महाराज ने एक वचन लिया कि यदि मुझे कोई युद्ध में या द्यूत क्रीड़ा में ललकारे, चुनौती दे, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज अपने स्वयं के वचनों से बद्ध होकर द्यूत क्रीड़ा में चल पड़े। इसलिए फिर आगे चल के हम सब जानते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ। तो अंततः फिर उनको वनवास में जाना पड़ा। और वनवास में 12 वर्ष रहना, उसके बाद 1 साल अज्ञातवास में रहना, और उसके बाद उनको उनका राज्य मिलना था इंद्रप्रस्थ। जब ऐसे वनवास में भेजा गया उस समय, तो धृतराष्ट्र के पास संजय ने आके उनकी भर्त्सना की। इसके पहले हुआ ये कि विदुर ने और द्रोण ने भी दुर्योधन से कहा था कि ये तो केवल कौरवों के विनाश की एक सूची है, बस थोड़े ही समय में विनाश होना है। ये सुनकर थोड़े हिल गए थे धृतराष्ट्र। और फिर जब पांडव चले गए तो उनको पता चला कि आगे चल के अब कोई शुभ घटनाएं होने वाली नहीं है, तो वो बहुत ही दुखी हो गए, पीड़ित हो गए। तो उस समय संजय उनके पास आए, हे महाराज, आपको अभी संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर साम्राज्य प्राप्त हो गया है और पृथ्वी में जितना भी धन है वो सब आपका है। अभी आपकी इच्छा थी कि पांडवों को वनवास में जाना है, ये इच्छा भी आपकी पूरी हो गई, तो अभी आप दुखी क्यों लग रहे हैं इतना? क्या कारण है आपके दुख के पीछे? तो धृतराष्ट्र ने कहा कि जिस प्रकार से द्रोणाचार्य ने कहा, विदुर ने कहा कि अब मेरे पुत्र जो कौरव हैं और पांडु के पुत्र जो पांडव हैं, इनमें युद्ध होना ही होना है, ये सारे लोग कह रहे हैं, तो इस विचार से मेरी मन की शांति भंग हो गई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि पांडवों के साथ में श्री कृष्ण हैं, पांडव कितने शक्तिशाली हैं, तो मेरे पुत्रों का हार जो है वो निश्चित है, इसलिए मैं बहुत दुखी हो गया हूं और मेरी नींद नहीं आ रही है रात में। तो फिर संजय ने कहा कि हे राजन, जो भी अब हुआ है वो केवल आपकी बड़ी भूल हुई है, ये जितने भी घटनाएं हुई हैं ये आपके कारण हुई हैं। यदि आप चाहते तो आपके दुष्ट बेटे को आप रोक सकते थे, परंतु आपने रोका नहीं, तो अभी दुख का अनुभव तो होना ही है। अभी पश्चाताप या प्रायश्चित करने से क्या लाभ है? ये घटनाएं जो हैं ये आपके अनुमति से हुई, तो इसलिए कुरुवंश का विनाश अब निश्चित है। और जिस प्रकार से आपने द्रौपदी के भरी सभा में खींच लिए जाने पर और इस प्रकार से अपमानित किए जाने पर भरी सभा में आप चुप रहे, आपने कुछ कहा नहीं, आपने अनुमति दी, इस एक कार्य से आपको पता नहीं है कि आपके कल्पना से बाहर है वो दुर्भाग्य, वो विनाश जो आप सारे आपके कुल के ऊपर लाने वाले हैं। केवल आपके ऊपर नहीं, परंतु जितने भी कुरुवंशी हैं उन सब का विध्वंस होना है इस एक कारण से। जब कोई व्यक्ति पराजय और अपमान का सामना करने जा रहा है, या जब उसके लिए पराजय और अपमान निश्चित है, तो सबसे पहले जो देवगण हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, उसकी सद्बुद्धि खत्म हो जाती है। आपने वो कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब विनाश का काल आ जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है। और फिर इस प्रकार ऐसा व्यक्ति जिसकी की बुद्धि नष्ट हो चुकी है, वो हर चीज को उल्टा देखने लगता है, विपरीत दृष्टि से देखता है, और उसे ऐसे प्रतीत होता है कि बुराई भी अच्छी है और अच्छाई बुरी है, ऐसा उसे लगने लगता है, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसे विनाश काल या ऐसे विनाश या पराजय के अवस्था से अभिभूत हो चुका है, तो वो ऐसे अनैतिक और दुष्ट कार्यों में आनंद लेने लगता है, और यही दशा आपके पुत्र दुर्योधन की है और आपके पुत्र दुशासन की है, शकुनि कर्ण जैसे लोगों की भी है। तो जब आपकी दशा ऐसे होने वाली है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि दुर्योधन आदि की दशा क्या होने वाली है, कितनी बुरी हालत उनकी होने वाली है। तो ऐसे कटु वचन संजय ने धृतराष्ट्र से कहे। साधारणतः ऐसे निकट के व्यक्ति ही इस तरह की भाषा कह सकते हैं, नहीं तो कोई साधारण व्यक्ति आके ऐसे कहे आजकल के समय में तो कोई कह ही नहीं सकता। परंतु पहले भी यदि राजा दुष्ट होता था तो यदि ऐसे कोई कहने का साहस करता तो उसको बस मृत्यु दंड दे देता। परंतु धर्मपरायण राजा जो होते थे वो प्रजा से भी ऐसे कभी कभी सुन लेते थे, कम से कम अपने निकट के जो सलाहकार होते थे उनसे तो सुन लेते थे। तो धृतराष्ट्र पहले से ही दुखी थे और अब संजय ने आके ऐसे कटु वचन कह दिए। धृतराष्ट्र को पता चला कि संजय जो कह रहे हैं वो सत्य है। फिर भी धृतराष्ट्र ने कहा कि हे सूत, वैसे जब द्रौपदी का अपमान भरी सभा में हुआ तो जितने भी पुरोहित हैं जो प्रतिदिन यहाँ पे सायंकाल में और प्रातःकाल में अग्निहोत्र करते हैं, उन्होंने सायंकाल के अग्निहोत्र को करने से मना कर दिया, और इसके बाद एक के बाद एक सब जगह मुझे अशुभ लक्षण दिखाई पड़े, जिससे मुझे पता चला कि जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है और इसके परिणाम अच्छे बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। और विदुर जी पहले से मुझसे कह चुके हैं कि पांडव जो हैं ये कभी भी द्रौपदी के अपमान को भूलेंगे नहीं। बार बार विदुर ने मुझसे कहा, मुझे सलाह दी कि शांति बनाए दो, बनाए रखो पांडवों के साथ, और कौरवों के बीच में शांति होनी चाहिए, जो पांडवों का अधिकार है उनको दे दो, इस प्रकार से ही शांति होगी। परंतु विदुर जी के सलाह को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे हृदय में मेरे दुष्ट पुत्र के प्रति बहुत आसक्ति है। तो धृतराष्ट्र जानते थे कि दुर्योधन कितना दुष्ट है, कितना घमंडी है, परंतु आसक्ति का स्वभाव कल के लक्षण देखिए। आसक्ति जब आ जाती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए शास्त्रों में ऐसे कहा गया है कि निरासक्ति ही हमारे लिए सुख का कारण है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग निरासक्ति से हमें भौतिक बंधनों को काटना चाहिए, ऐसे 15वें अध्याय में श्री कृष्ण भी कहते हैं। तो जहां आसक्ति ज्यादा होती है वहां पे कष्ट ज्यादा होता है, अज्ञान वहां पे ज्यादा होता है। तो खैर इस घटना के थोड़े समय बाद धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया। विदुर भी उनके बहुत महत्वपूर्ण एक सलाहकार थे, भाई थे दोनों। तो धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि मेरे पुत्रों का कल्याण कैसे होना है, जब अब तुम भी कह रहे हो, द्रोणाचार्य कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि कुरुवंश का विनाश होना है, तो मेरे पुत्रों के बारे में मैं बहुत चिंतित हूं, तो उनके हित के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कृपा करके बता दो। और साथ साथ में ये सारे प्रजा जो हैं ये भी नाराज हो गए मेरे ऊपर, क्रोधित हो गए हैं, तो इनको कैसे शांत किया जाए, कृपया मुझे कुछ कह दो। तो विदुर जी भी इसी प्रकार के सलाहकार और हितैषी थे धृतराष्ट्र के, कि जैसे संजय थे, बल्कि विदुर तो बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति जाने जाते हैं। विदुर जी की विदुर नीति बहुत विख्यात है, जैसे चाणक्य की नीति है, तरह तरह के नीति शास्त्र हैं वैदिक सभ्यता में, चाणक्य की एक है और भी है, उसे विदुर नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो विदुर जी इतने बुद्धिमान थे इसलिए धृतराष्ट्र अक्सर विदुर जी से कुछ सुना करते थे। तो विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से कि देखिए, धर्म अर्थ काम के क्षेत्र में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो वो केवल धर्म का पालन करने से होगा। धर्म ही बुनियाद है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यदि मोक्ष की बात तो दूर रही, यदि कोई अर्थ प्राप्त करना चाहता है और अर्थ के कारण अर्थ की सहायता से विषय भोग करना चाहता है, ये सब करने के लिए भी बुनियाद या नींव धर्म होना चाहिए। अधार्मिक रीति से यदि कोई अर्थ कमाना चाहे और काम का भोग करना चाहे तो फिर वो नहीं होगा। इसलिए हे राजन, मेरी सलाह आपके लिए यही है कि समभाव से आपको कौरवों और पांडवों को देखना चाहिए। इस प्रकार का भेद मत कीजिए कि ये दुर्योधन आदि आपके पुत्र हैं और ये युधिष्ठिर आदि ये आपके भाई के पुत्र हैं। इस प्रकार का भेदभाव मत कीजिए, पक्षपात मत कीजिए, समभाव रखिए। तो जो पांडवों का अधिकार है उनको आप दे दीजिए, उनका जो राज्य है आपको लौटाना चाहिए। और इस प्रकार आपको शकुनी को बुलाना है, शकुनी को डांटना है आपको। साथ साथ में यदि इस प्रस्ताव से दुर्योधन सहमत नहीं है तो दुर्योधन को आप त्याग कर दो। यदि दुर्योधन तैयार है युधिष्ठिर को राज लौटाने के लिए और युधिष्ठिर और अन्य पांडवों के साथ में शांति से रहने के लिए, तब आप दुर्योधन को स्वीकार कर सकते हो, अन्यथा बहिष्कृत कर दो, बहिष्कार कर दो दुर्योधन का। साथ साथ में कर्ण, दुशासन आदि जिन्होंने द्रौपदी का खुली सभा में, भरी सभा में अपमान किया था, उनको युधिष्ठिर महाराज के सामने और विशेष रूप से द्रौपदी के सामने क्षमा याचना करनी चाहिए। सबके सामने जब तक ये दुशासन क्षमा याचना नहीं करेगा द्रौपदी के अपमान के लिए, तब तक कोई कल्याण यहां कुरुवंश में नहीं हो सकता है। तो ये एकमात्र उपाय है हे राजन परिस्थिति को ठीक करने के लिए, और मेरा सलाह केवल यही है मैं जो आपको दे सकता हूं। इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई सलाह नहीं है आपके लिए। तो धृतराष्ट्र को गुस्सा आया। धृतराष्ट्र वास्तव में विदुर से बहुत प्रेम करते थे और वो जानते थे कि विदुर उनका शुभ चिंतक है, फिर भी आसक्ति होने के कारण गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, मैं सोचता हूं विदुर कि तुम मेरे शत्रु हो और इस प्रकार के टेढ़ी बातें तुम कह रहे हो, को अयोग्य मुझे तुम सलाह दे रहे हो। मैंने आज तक सोचा था कि तुम बहुत धर्मपरायण व्यक्ति हो और बहुत ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति हो, परंतु आज मेरा निर्णय बदल गया है। अब मुझे पता चला है कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, इसलिए आज से मैं तुम्हारी सलाह स्वीकार नहीं करूंगा। तुम या तो यहां पर रहो और या तो यहां से चले जाओ। इतने कटु वचन आज धृतराष्ट्र ने कह दिए। तो विदुर को ऐसे शब्द तीर के समान, हृदय में तीर के समान प्रतीत हुए। विदुर को इतना बुरा लगा कि तुरंत उस स्थान को छोड़कर वो चले गए। और ये केवल एक बार ऐसे नहीं, आगे चल के और भी होना था। आगे चल के भी दुर्योधन इसी प्रकार के कटु वचन बोलने वाला था विदुर को, जिसके कारण विदुर दोबारा राज्य छोड़कर चले गए। और इसलिए विदुर को पता नहीं चला कि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, किस प्रकार का युद्ध होना था, कैसे हुआ। विदुर और बलराम ऐसे दो व्यक्ति से थे जो युद्ध से दूर चले गए। तो विदुर तो निकल गए, पांडवों के पास गए। उस समय पांडव कहाँ रहते थे? ब्रजमंडल में रहते थे। कहाँ पे? ब्रजमंडल में, काम्य वन में। तो महाभारत में इस स्थान को काम्यक वन कहा गया है, आजकल की बोली में उसे काम्य वन कहते हैं। तो काम्यक वन में विदुर जी चले गए। धृतराष्ट्र ने तो ऐसे कटुवचन बोल डाले, बाद में पछताने लगे। ऐसे होता है ना कभी कभी, कभी कभी हम भी गुस्से में आकर किसी से कुछ शब्द कह देते हैं, बाद में पछताते हैं कि अरे मैंने क्या कह दिया, बहुत बड़ी गलती कर ली। आप में से किसी को इस प्रकार का अनुभव हुआ है? कितने भक्तों को हुआ अनुभव, हाथ ऊपर कीजिए, कि कुछ गुस्से में आके आपने कुछ कह दिया, बाद में सोचने लगे अरे रे 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 क्या कह दिया मैंने, नहीं कहना चाहिए था। तो धृतराष्ट्र रात भर सो नहीं पाए, बहुत दुख हुआ कि मैंने विदुर से इतने कटु वचन कहे, क्यों कहा मैंने। तो फिर बुलाया, किनको बुलाया? संजय, और कौन? संजय को बुलाया कि संजय मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई, विदुर मेरे भाई हैं, विदुर मेरे हितैषी हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता हूं, और वो जो विदुर कह रहे थे वो सत्य कह रहे थे, परंतु मैं क्या करूं, मेरे हृदय में इतनी आसक्ति है मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से कि मैं इस प्रकार के सलाह को स्वीकार करने के लिए समर्थ नहीं हूं। इसलिए मुझे क्रोध आ गया और मैंने मेरे संतुलन को खोकर इस प्रकार की बातें कह डाली, लेकिन अब मुझे इतना पछतावा हो रहा है, इसके लिए एक ही उपाय है, संजय तुम तुरंत चले जाओ काम्यक वन में जहाँ की पांडव हैं, और वहां से विदुर को बुलाकर ले आओ, मेरी क्षमा याचना जो है उन तक पहुंचाना। तो फिर तुरंत संजय गए वहां पर। ऐसे कठिन कार्यों के लिए धृतराष्ट्र संजय को चुनते थे, जो बारीकी के नाजुक कार्य होते थे उसके लिए संजय जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। इसलिए कोई राजा होते हैं या आजकल के काल में भी जो दूत होते हैं बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, होना चाहिए कम से कम, उनको पता होना चाहिए कि कैसे बात करनी चाहिए, क्या कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई ऐसे गलत शब्द निकल गए तो दोनों देशों के बीच में संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए जो ऐसे राजनीति के क्षेत्र में रहते हैं और तो उनको बहुत अपने शब्दों के संबंध में सावधान होना पड़ता है। तो बहुत बुद्धिमान लोगों को चुना जाता है दूत बनने के लिए। तो संजय चले गए वहां पर और कह दे कि विदुर जी, धृतराष्ट्र को बहुत भारी पछतावा हो रहा है, तो वो क्षमा याचना कर रहे हैं। विदुर का हृदय पिघल गया। विदुर ने भी सोचा, ये भी मेरे भाई हैं, बेचारे बुरे आदमी नहीं हैं, लेकिन आसक्ति के कारण क्या करे, हृदय दौर्बल्यम, भगवद गीता में जैसे कहा गया है अर्जुन के बारे में, हृदय दौर्बल्यम, हृदय के दुर्बलता के कारण वो ऐसे गलत काम करते हैं। तो लौट के आए विदुर, और फिर धृतराष्ट्र के आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे, उन्होंने बहुत क्षमा याचना की, गले लगाया विदुर का, और फिर दोनों के बीच में संबंध फिर से ठीक हो गए। तो ये संजय के कारण हुआ। फिर आगे चल के संजय ने विस्तार में वर्णन किया धृतराष्ट्र को कि जब वो काम्यक वन में गए थे तो वहां पर किस प्रकार से श्री कृष्ण, अर्जुन इत्यादि बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो वृष्णि कुल हैं और उनमें से जो कृष्ण और बलराम सबसे सामने हैं, और साथ साथ पांडव हैं, धृष्टद्युम्न, द्रुपद आदि हैं, इन सब ने एक व्रत लिया है, और वो उस व्रत को संजय ने बड़े विस्तार में बताया धृतराष्ट्र को। संक्षेप में वो व्रत क्या था? वो व्रत ये था कि इन्होंने, कृष्ण और पांडवों ने इत्यादि व्रत लिया कि हम कौरवों की हत्या करेंगे, ये व्रत था। तो आके उन्होंने ये बतला दिया कि ऐसे उन्होंने व्रत लिया है काम्यक वन में, और ये कोई साधारण व्यक्ति कोई व्रत लेता है ये अलग बात है, लेकिन पांडव जैसे लोग व्रत लेते हैं, उनमें अर्जुन भीम जैसे योद्धा हैं, युधिष्ठिर जैसे धर्मराज हैं, और साथ साथ श्री कृष्ण जो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं, जो धर्म के स्रोत हैं, जब वो इस प्रकार का व्रत लेते हैं तो बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने सुन लिया इन बातों को और उनके हृदय में अशांति और भी बढ़ गई। तो खैर ऐसे कई वर्ष बीत गए। 13वां वर्ष अज्ञातवास का था, वो भी समाप्त हो गया। फिर अज्ञातवास समाप्त होने के बाद पुनः वो लोगों के सामने आ गए। उस समय वो उपप्लव्य में थे। उपप्लव्य महाराज विराट की राजधानी थी, जहां पर वो एक वर्ष अज्ञातवास में थे पांडवगण। तो उस समय खबर पहुंच गई हस्तिनापुर में कि पांडवों का वनवास समाप्त हो चुका है, 13 वर्ष हो गए। अभी वहां पर सभी के मन में प्रश्न एक था। क्या प्रश्न था? 13 वर्ष समाप्त हो गए तो कौन सा प्रश्न? हाँ, प्रश्न कौन सा था मुख्य? राज्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब द्यूत क्रीड़ा हुई थी और युधिष्ठिर महाराज को अवैध तरीके से हराया गया था, तो उस समय शर्त लगाई गई थी कि जो हारेगा वो 13 वर्ष वनवास में रहेगा, उसमें जो अंतिम वर्ष है वो अज्ञात रूप में, और यदि वो ढूंढे गए उस 13वें वर्ष में पुनः उनको अज्ञातवास 13 वर्ष करना पड़ेगा। तो जब वो लौट के आएंगे फिर उनको इंद्रप्रस्थ मिलना था, ये तो साधारण रूप से सर्वविदित था। किंतु दुर्योधन का दुष्ट स्वभाव सभी लोग जानते थे, और जब एक व्यक्ति दुष्ट होता है और उसके संगी उसके साथी भी दुष्ट होते हैं तो कोई अच्छे चीज की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? सबको संशय तो होगा। इसलिए ये बड़ा प्रश्न उत्पन्न हुआ उस समय कि क्या पांडवों का राज्य उनको मिलेगा या नहीं, और इससे संबंधित दूसरा प्रश्न कौन सा उत्पन्न होगा? युद्ध होगा कि नहीं? क्योंकि यदि पांडवों का राज उनको नहीं मिला तो युद्ध तो होना ही था फिर। तो जब युद्ध की बात आई तो धृतराष्ट्र को बहुत भय उत्पन्न हुआ, बहुत भय का अनुभव हुआ, क्योंकि उनको पता था कि पांडवों के कारण मेरे पुत्रों की हत्या होनी है। तो बहुत चिंतित होकर उस समय धृतराष्ट्र ने संजय को दोबारा भेजा, संजय को बुलाया और कहा कि हे संजय, उपप्लव्य में जाओ और वहां पांडवों से इस प्रकार से चर्चा करो ताकि उनका मन शांत हो जाए, उनको थोड़ी बहुत सांत्वना दे दो, और इस प्रकार से ऐसे प्रयास करो कि युद्ध न हो, कि पांडवों और कौरवों के बीच में शांति बनी रहे। और फिर धृतराष्ट्र जब संजय से बात कर रहे थे तो वो पांडवों की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, हृदय से कर रहे थे धृतराष्ट्र पांडवों की प्रशंसा, क्योंकि वास्तव में जानते थे धृतराष्ट्र कि पांडव कितने अच्छे थे। तो धृतराष्ट्र कहने लगे कि हे संजय, मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि किस प्रकार से युधिष्ठिर मेरे प्रति इतना आज्ञाकारी था, और यहां तक कि जब वो पृथ्वी का सम्राट था उस समय भी, विश्व सम्राट होने के बाद भी उसने मेरे हर बात को माना, मुझे पूर्ण सम्मान दिया, और साथ साथ में मैं ये बहुत ही ईमानदारी से कह सकता हूं कि जब मैंने पांडवों के चरित्र की परीक्षा करके देखी है उनके संपूर्ण जीवन में, तो मैं उनके चरित्र में एक भी कोई गंभीर भूल नहीं ढूंढ पा रहा हूं। छोटी मोटी भूल हो सकती है, लेकिन कोई गंभीर भूल या दोष मुझे नहीं दिखाई दे रहा है सारे पांडवों में। तो मुझे पता है कि उनको सांत्वना दिए जाने पर ये जो युद्ध है इसको टाला जा सकता है। यदि युद्ध हो जाए तो बहुत विध्वंस हो जाएगा, बहुत बुरा होगा, और पांडव सभी के लिए प्रिय है, केवल मेरा जो दुष्ट पुत्र है दुर्योधन और कर्ण, इन दोनों के सिवाय सभी लोग पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए मैं इस युद्ध को हर हालत में टालना चाहता हूं, क्योंकि इसमें मुझे पता है कि श्री कृष्ण जो कि स्वयं विष्णु भगवान हैं, पांडव वास्तव में अजेय हैं। अजेय मतलब जिनको हराया नहीं जा सकता है। पांडव क्यों अजेय हैं? क्योंकि श्री कृष्ण जो कि साक्षात भगवान विष्णु हैं, वो उनके साथ में हैं। और मुझे पता है, निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि जब ये दो कृष्ण एक साथ में एक रथ में रहेंगे, तो फिर हमारे मेरे जितने भी पुत्र हैं 100 पुत्र, उनका विनाश होना निश्चित है। ये दो कृष्ण कैसे हो गए? अर्जुन का नाम भी कृष्ण है, तो कृष्ण तो कृष्ण है ही, वसुदेव के पुत्र कृष्ण, साथ साथ में अर्जुन का नाम भी कृष्ण है, क्योंकि उनका भी रंग सांवला था, और द्रौपदी का नाम कृष्णा है, दीर्घ मात्रा कृष्णा, और यमुना का नाम भी कृष्णा है। इसलिए जब हम कहते हैं हरे कृष्णा नहीं कहना चाहिए, तो फिर हम राधा रानी और द्रौपदी को पुकार रहे हैं, या राधा रानी या यमुना को पुकार रहे हैं, वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं, वो भी भक्त हैं भगवान के, परंतु महामंत्र है कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्तर भारत, जैसे राम शब्द है ना, उत्तर भारत में राम कहते हैं राम, और दक्षिण भारत में रामा कहते हैं, अयो रामा, वो न राम है न रामा है, वो राम है म, उसी प्रकार से ना कृष्ण न कृष्णा है, कृष्ण है। ऋषिकेश में बहुत साल पहले हमारे भक्त लोग जब गए थे पहली बार, तो मैं भी वहाँ गया था एक बार ऐसे उनके आश्रम में 2-4 दिन रहने के लिए, तो वहाँ के स्थानिक लोग थोड़े आए थे, बहुत विचलित हो गए थे, और उनकी क्या शिकायत थी, उन्होंने कुछ दुष्प्रचार किया था हमारे भक्तों के बारे में कि ये लोग हमारी संस्कृति को विनाश कर रहे हैं। तो भक्तों ने उनको बुलाया था कि भाई हम किस प्रकार से आप हमारी संस्कृति का विनाश कर रहे हैं, हम तो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे थे हमारे भगवान हैं किशन, कृष्ण भगवान हैं, और आपने कृष्ण भगवान को कृष्णा बना दिया, तो ये आपने सब गलत कर दिया। तो उत्तर में हो कृष्ण किशन कृष्ण, और दक्षिण में कृष्णा या रामा, तो है ये कृष्ण, तो ये कृष्ण और कृष्णा में अंतर भी समझना है। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि जी वे दोनों कृष्ण अब एक रथ पे होंगे, तो मेरे पुत्रों के लिए पराजय और विनाश निश्चित है। इसलिए हे संजय, एक शांति दूत बन के मेरा प्रतिनिधित्व करके उपप्लव्य में जाके पांडवों को शांत करो, और तुरंत वहां से निकल पड़े संजय, निकलकर उपप्लव्य में पहुंचे। पांडवों ने उनका हार्दिक स्वागत किया, और संजय ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र महाराज उनके कल्याण के बारे में, उनके हालचाल के बारे में चिंतित हैं और पूछ रहे थे। साथ साथ युधिष्ठिर महाराज ने भी कुरुवंशियों के कल्याण के बारे में जिज्ञासा की। फिर संजय ने अपना संदेश देना शुरू कर दिया कि धृतराष्ट्र हृदय से चाहते हैं कि पांडव और कौरव दोनों ही शांति से आपस में मिलजुल कर रहें। वो बहुत ही उनको बहुत खेद हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि आपको 13 वर्ष वन में रह के इतना कष्ट का अनुभव करना पड़ा, और वो केवल उनके दुष्ट पुत्र दुर्योधन के कारण है। इसलिए धृतराष्ट्र ने ये संदेश भेजा है। तो क्या संदेश है? कि मैं सर्वप्रथम श्री कृष्ण को और द्रुपद महाराज को साष्टांग प्रणाम करता हूं, और मैं ये याचना करता हूं कि पांडव और कौरवों के बीच में शांति बनी रहे, और ये भीष्म देव की इच्छा भी है। इस प्रकार से ये बहुत भयंकर युद्ध को टाला जा सकता है। तो ये धृतराष्ट्र का प्रस्ताव संजय ने आके युधिष्ठिर महाराज के सामने रखा। उस समय अन्य पांडव भी उपस्थित थे, वहां पर श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। तो उस समय फिर युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर देना शुरू किया। और यदि आप जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या उत्तर दिया और आगे चल के वार्तालाप कैसे हुआ, तो आपको अगले रविवार को ठीक यहीं पे इसी समय आना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो कुछ सूचनाएं हैं, तो सूचनाओं से पहले हम परम पूज्य भक्ति सामुर महाराज को धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर प्रवचन के लिए। 3 बार जो से हरि बोल की हरि बोल हरि बोल हरि बोल, धन्यवाद। और साथ ही साथ जो भक्त पहली बार मंदिर में आए हैं उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। तो कुछ समय के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाइए जो भक्त पहली बार आए हैं। आज के पावन दिन पर बहुत सारे भक्त यहाँ पे नए आए, आपका स्वागत करते हैं मंदिर में। और नियमित आने वाले जो भक्तों से भी विनती करते हैं कि इनका भी स्वागत जोर से हरि बोल बोल के कीजिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, धन्यवाद, भेज जाइए। और हमारे यहाँ पे वल्लभ निमय प्रभु हैं, कृपया प्रभु जी खड़े हो जाइए। तो आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए जो हमारे दैनंदिन और साप्ताहिक कार्यक्रम होते हैं, तो उनके लिए आपसे इनसे जानकारी ले सकते हैं। और आपके लिए भी कुछ आज पहले दिन आए हैं इसके लिए उपहार भी आपको वो देंगे, उसका भी आप स्वीकार कीजिए, धन्यवाद। आज मोक्षदा एकादशी है, जैसे कि आप सबने पालन किया रहेगा। तो आज का जो एकादशी में शाम को जो प्रवचन होता है रविवार होने का नहीं होगा, बाकी अन्य कार्यक्रम इसी तरह से चलते रहेंगे जैसे एकादशी को होते हैं। और इसका जो पारणा समय है वो है कल सोमवार को सुबह 6:45 से 10:30। और हरे कृष्ण प्रचार केंद्र बसरी कट्टी की ओर से बुधवार से वहाँ पे उनका जो वार्षिक कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहा है ग्रंथ दिन हरिनाम संकीर्तन से। उसके बाद हर दिन गुरुवार से शनिवार तक वहाँ पे